नमस्कार भारत, आज है 23 मई दिन सोमवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ईरान पहुंचने पर भव्य स्वागत, आज कई महत्वपूर्ण समझौतों पर दस्तखत की उम्मीद।
दो एग्रीमेंट्स हैं, एक छाबार पोर्ट के फेज वन डेवलपमेंट का है और एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट है इंडिया ईरान और अफगानिस्तान के बीच में।
ग्रीस की संसद ने खर्च में कटौती के लिए कई कठोर आर्थिक सुधारों को दी मंजूरी। आरजेडी ने नीतीश कुमार की आलोचना करने वाले अपने सांसद तस्लीमुद्दीन को दिया कारण बताओ नोटिस। होगा पाकिस्तान से बुसतुल्ला खान का ब्लॉग, साथ ही मिलेगा लिम्का बुक में दर्ज प्राचीन सिक्कों के एक अनोखे संग्रहकर्ता से।
ऐसे काउंटिंग करें तो मेरे पास 363 देशों के सिक्के इकट्ठे हो चुके हैं।
होंगी अन्य खबरें भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार विस्तार से।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से मुलाकात करेंगे। दो दिन के दौरे पर ईरान पहुंचे मोदी की रूहानी से मुलाकात के दौरान चाबहार पोर्ट को लेकर अहम बातचीत हो सकती है। भारत इस परियोजना में निवेश कर रहा है, इससे भारत ईरान और अफगानिस्तान के बीच व्यापार बढ़ाने में मदद मिल सकती है। तीनों देशों के बीच होने वाले समझौते के लिए आज अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी भी ईरान पहुंच रहे हैं। इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी ने फलूजा शहर को इस्लामिक स्टेट से मुक्त कराने के लिए बड़े सैन्य अभियान का ऐलान किया है। इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों ने 2 साल पहले इस शहर पर अधिकार जमा लिया था। शहर के आसपास सेना और पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है। आम लोगों से शहर छोड़ने को कहा गया है। अनुमान है कि शहर में आम लोगों की आबादी करीब 60,000 है। इनमें इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों के परिवार के लोगों की बड़ी संख्या है। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा 3 दिन के दौरे पर वियतनाम पहुंच गए हैं। वियतनाम युद्ध की समाप्ति के बाद ओबामा इस देश का दौरा करने वाले अमरीका के तीसरे राष्ट्रपति हैं। ओबामा के दौरे के दौरान अमरीका और वियतनाम के बीच रक्षा और आर्थिक संबंध मजबूत होने की उम्मीद की जा रही है। वियतनाम के लोगों को ओबामा की यात्रा को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं। लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता और संगीतकार माइक होई ने बीबीसी से कहा,
इफ द प्रेसिडेंट ओबामा मीट अस, इट विल एनकरेज।
अगर राष्ट्रपति ओबामा हमसे मुलाकात करते हैं तो इससे युवाओं की राजनीति में दिलचस्पी बढ़ेगी। सारी चीज़ें बदलनी होगी, लेकिन वियतनाम में बदलाव की रफ्तार काफ़ी धीमी है। ये थे वियतनाम की लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ग्रीस की संसद ने कठोर आर्थिक सुधारों से जुड़े विधेयक को पारित कर दिया है। विधेयक को मंजूरी दिए जाने के पहले 4 दिन तक जोरदार बहस हुई। नए विधेयक में टैक्स बढ़ाने और सरकारी संपत्ति के प्रबंधन के लिए नया कोष बनाने के प्रावधान शामिल हैं। ग्रीस के प्रधानमंत्री अलेक्सिस सिप्रास ने कहा है कि नतीजों से जाहिर है कि उनका देश अपने आर्थिक वादों का सम्मान करता है। विधेयक के विरोध में हजारों लोगों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। ब्राजील में कार्यवाहक राष्ट्रपति मिशेल तिमर के खिलाफ हजारों लोगों ने रियो डी जेनेरो और साओ पाउलो में प्रदर्शन किया। साओ पाउलो में तिमर के घर की तरफ बढ़ते लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने सड़कें बंद कर दी। रियो में प्रदर्शनकारियों ने तिमर से इस्तीफा देने की मांग की। सीनेट की ओर से जिल्मा रूसेफ के खिलाफ महाभियोग को मंजूरी दिए जाने के बाद तिमर ने राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभाली है। उन्हें हर दिन विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ रहा है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर भी लाइव। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर इस समय ईरान में हैं। पिछले 15 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली ईरान यात्रा है। 4 महीने पहले ईरान से प्रतिबंधों के हटने के बाद वहां पहुंचे नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया है। आज वो ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी और सुप्रीम धार्मिक नेता अयातुल्ला खामेनेई से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल लेकर ईरान गए हैं और दोनों देशों के बीच आज आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मामलों से जुड़े कई अहम समझौते होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेहरान में ईरान के साथ ही अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी से भी मिलने वाले हैं। इन नेताओं के बीच किन किन अहम मसलों पर बात होगी, यही जानने के लिए हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने बात की तेहरान गए पीटीआई के संवाददाता अम्मार जैदी से।
प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह उनको सेरेमोनियल रिसेप्शन दिया जाएगा, उसके बाद उनकी ईरानियन प्रेसिडेंट के साथ बायलैटरल बातचीत है, फॉलोड बाय साइनिंग ऑफ दो एग्रीमेंट्स हैं, एक छाबार पोर्ट के फेज वन डेवलपमेंट का है और एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट है इंडिया ईरान और अफगानिस्तान के बीच में एक ट्रांजिट कॉरिडोर के लिए। ये दो इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट साइन होंगे आज।
चाबहार बंदरगाह में भारत की क्या दिलचस्पी है?
चाबहार भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट है क्योंकि इससे भारत को अफगानिस्तान में एक्सेस मिलेगा, पाकिस्तान को बाईपास करके। चाबहार का रोड कनेक्टिविटी अफगानिस्तान से एस्टैब्लिश है, अगर भारत चाबहार में अपना पोर्ट बनाता है तो भारत अफगानिस्तान जो तजारत है वो आसानी से कर सकता है, वहाँ से रोड कनेक्टिविटी मजार शरीफ तक है, तो चार जो प्रोविंस है अफगानिस्तान के वो सारे कवर हो जाते हैं रोड कनेक्टिविटी से चाबहार पोर्ट से।
आप ईरान में तेहरान में मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर वहाँ किस तरह का माहौल देखा जा रहा है?
मोदी जी ईरान में पहली बार आ रहे हैं, 15 साल में प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। यहाँ पे लोगों में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा एक्साइटमेंट है क्योंकि ईरान सैंक्शंस के हटने के बाद अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है, वो पहले चाइना के साथ उन्होंने अपने संबंध स्थापित किए, फिर कोरिया के साथ, अब वो भारत की तरफ देख रहा है क्योंकि ईरान चाहता नहीं है कि वो सब एक ही देश के साथ सारी अपनी डीलिंग्स करें, उसी दिशा में भारत को भी वो इसी दिशा इसी कोण से देखता है।
ये बताएं कि ईरान में इंडियन कम्युनिटी इस दौरे को, इस यात्रा को कैसे देख रही है?
तेहरान में इंडियन कम्युनिटी के बहुत छोटी पॉपुलेशन है, ज्यादातर तिजारत करने वाले लोग हैं, पर उनकी अपनी समस्याएं हैं, इसलिए मोदी जब पहली बार जब तेहरान में लैंड किए कल, तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे लोकल गुरुद्वारा है वहाँ जाना पसंद किया और वहाँ के लोगों ने उनको अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराया, जिसमें एक प्रमुख समस्या है उनके पास अपना खुद का शमशान घाट ना होना। वो समस्याएं हैं जो पिछले कई सालों से चली आ रही हैं, उनका समाधान आज तक नहीं हो पाया है, तो उम्मीद है कि मोदी जी की यात्रा से उसमें कुछ असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के साथ भी उनकी भेंटवार्ता है आज शाम में भारत लौटने से पहले, वो बड़ा सिग्निफिकेंस है क्योंकि जो शियाइट ईरान है उसके सुप्रीम लीडर ज्यादातर गैर इस्लामिक लीडर्स के साथ मुलाकात करना पसंद नहीं करते हैं। मोदी जी के साथ उनके मीटिंग यही सिग्निफाई करता है कि ईरान भारत को अपना एक अच्छा पार्टनर समझता है और जिसने उनके बुरे वक्त में साथ दिया है, उसी दृष्टिकोण से इसको देखा जाना चाहिए।
ये थे पीटीआई के संवाददाता अमार जैदी। ग्रीस की संसद ने 4 दिन तक चली तीखी बहस के बाद खर्च में कटौती के लिए कई कठोर आर्थिक सुधारों को मंजूरी दे दी है। नए विधेयक में सरकारी संपत्ति के प्रबंधन के लिए निजी कोष बनाने और टैक्स में इजाफे के प्रावधान शामिल हैं। प्रधानमंत्री अलेक्सिस सिपरास ने कहा कि ग्रीस अपने आर्थिक वादों का सम्मान करता है। नए प्रावधानों का विरोध करने के लिए संसद के बाहर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे थे। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे को सुना रहे हैं वात्सल्य राय।
यूरोजोन की अहम बैठक के पहले ग्रीस की संसद ने कठोर आर्थिक सुधारों को मंजूरी दे दी है। संसद ने बजट में कटौती और टैक्स में इजाफे से जुड़े विधेयक को 145 के मुकाबले 153 वोटों से मंजूरी दी। इस विधेयक में यूरोजोन के वित्त मंत्रियों की ओर से किए गए अनुरोध के मुताबिक सरकारी संपत्ति के प्रबंधन के लिए नए निजी कोष का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया के तहत अगर ग्रीस बेलआउट समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने में नाकाम रहता है तो सरकारी खर्चों में कटौती खुद ही लागू हो जाएगी। ग्रीस के प्रधानमंत्री अलेक्सिस सिप्रास ने कहा, आज देश का एक मुश्किल चक्र पूरा हुआ। हमने पहले मूल्यांकन की दिशा में आखिरी कदम उठाया है जिससे ग्रीस में नए रचनात्मक युग की शुरुआत का संकेत मिलेगा। नए युग में मुश्किलें तो होंगी लेकिन संभावनाएं भी होंगी। आज यूरोप के नेताओं को संदेश मिलेगा कि ग्रीस अपने वादों का सम्मान करता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साझा समझौते के तहत कल वो अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। ये थे ग्रीस के प्रधानमंत्री के शब्द। यूरोजोन के वित्त मंत्रियों की बैठक मंगलवार को ब्रसेल्स में होनी है और माना जा रहा है कि इसमें बेलआउट कोष से प्रतिबंध हटाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कर्ज चुकाने के लिए ग्रीस को इस रकम की जरूरत है। ग्रीस ने पिछले साल 86 अरब यूरो के तीसरे बेलआउट के लिए सहमति जताई थी। ग्रीस की मुख्य विपक्षी न्यू डेमोक्रेसी पार्टी के नेता किरियाकोस मिट्सोटाकिस ने नए प्रावधानों को लेकर सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा,
καμία χώρα στον πλανήτη, σε καμία ήπειρο, δεν βρέθηκε σε τόσο χαμηλό επίπεδο αξιοπιστίας.
Πούρη δουνία με κισι δέσ' κι βισιοσνίαιτα καμπί ήτρε νίτσι στερ παρ να ही पहुंची है कि जहां कर्जदाता आवश्यक तौर पर अग्रिम कटौती की मांग करे। इससे बुरा यह है कि एक देश की सभी सरकारी संपत्तियों पर नियंत्रण की प्रक्रिया लागू करने की मांग करें। श्रीमान सिप्रास, ये कटौती आपकी निजी विश्वसनीयता का मूल्यांकन करती है, क्योंकि हमारे कर्जदाता अच्छी तरह से जानते हैं कि जो उपाय आपने प्रस्तावित किए हैं वो काम नहीं करेंगे, इसलिए वो अग्रिम तौर पर और उपाय चाहते हैं। ये थे किरियाकोस मिट्सोटाकिस के शब्द। ग्रीस को 2 महीने में 3.5 अरब यूरो के कर्ज की अदायगी करनी है। इसके लिए वो सहायता राशि हासिल करने की कोशिश में जुटा है। इस महीने की शुरुआत में ग्रीस की संसद ने पेंशन और आयकर प्रणाली में सुधारों को मंजूरी दी थी। नए विधेयक का विरोध करने के लिए रविवार को संसद के बाहर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे थे। सुधारों के विरोध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हड़ताल भी जारी है।
ग्रीस का आर्थिक संकट, जानकारी दे रहे थे वात्सल्य राय।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
उत्तराखंड की हरीश रावत सरकार को मिला सीबीआई का समन एक तरह से केंद्र सरकार की उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत उन्हें जांच में कथित तौर पर उलझाया जा रहा है। मुख्यमंत्री हरीश रावत को मंगलवार को दिल्ली आना है, जहां सीबीआई उनसे स्टिंग से जुड़े मामले में पूछताछ करेगी। हरीश रावत का आरोप है कि सीबीआई केंद्र के इशारों पर काम कर रही है। देहरादून से सुनिए शिव जोशी की रिपोर्ट।
बीजेपी आलाकमान उत्तराखंड में सीबीआई के तीर से दो निशाने साधने की फिराक में है। एक तो मुख्यमंत्री हरीश रावत को जांच और पूछताछ और दिल्ली आने जाने में उलझाए रखना, और दूसरा प्रदेश की जनता में रावत के कथित भ्रष्टाचार का प्रचार करते रहना। 2017 के विधानसभा चुनावों के लिए फिलहाल बीजेपी की रणनीति का ये पहला बिंदु है। मुख्यमंत्री हरीश रावत का आरोप है कि सीबीआई को जानबूझकर उनके पीछे लगाया जा रहा है।
केंद्र सरकार ने जो एक पक्षी तौर पर जो है एक पक्ष को टारगेट किया है, तो इससे उन्होंने सीबीआई के हाथ भी बांधे हैं उनको, जबकि सीधे सीधे कहना चाहिए था कि यदि दल बदल किया गया है, हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, तो इसकी जो है आप व्यापक जांच करिए, और यदि उन्होंने नहीं किया है जब, तो अब हमने कहा कि भाई 18 तारीख से लेकर के अभी तक का जितना सारा प्रकरण है उसमें सब जांच हो जाए।
हरीश रावत 18 मार्च से शुरू हुए इस राजनीतिक घमासान के लिए बीजेपी आलाकमान और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। उन्होंने तो बीजेपी के महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय के हाल के देहरादून दौरों पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि विधायक खरीदने के लिए उत्तराखंड के आकाश में गिद्ध मंडरा रहे थे। बीजेपी रावत की इस टिप्पणी पर बुरी तरह उखड़ी हुई है। उसका कहना है कि रावत के खिलाफ स्टिंग को जनता के बीच ले जाकर उनका पर्दाफाश किया जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट,
भारतीय जनता पार्टी वालों पर ब्लेम लगाते हैं, लुटेरों की तरह से, बगदादी लुटेरों की तरह से लूट रहे हैं उत्तराखंड को, और आज पकड़े गए, सबके सामने देखे गए, सबके सामने, अगर ये स्टिंग नहीं होते तो जनता भी नहीं जानती है।
मुख्यमंत्री रावत कह चुके हैं कि उनका इरादा निर्धारित समय पर ही चुनाव में जाने का है, लेकिन अगर सीबीआई से उन्हें इस तरह से बुलावा आता रहा तो वो अपना विचार बदल भी सकते हैं, क्योंकि जांच के काम का चुनाव की निर्धारित अवधि यानी अगले साल फरवरी तक खींचना कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। उधर बीजेपी के साथ जा मिले कांग्रेस के बागी नेताओं का दावा है कि चाहे रावत कुछ भी कर लें, चुनावों में उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता विजय भोगुणा,
लेकिन पिछले 2 वर्षों में जिस तरह से वहाँ नीतियाँ अपनाई गई जो कि पर्यावरण के लिए खतरा थे, जो कि विकास के बजाय विनाश हो रहा था, और 2 वर्ष लगातार मेरे साथी अपनी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व उसको अवगत कराते रहे कि असंतोष बढ़ रहा है, जनता में असंतोष है, और ये एक दिन ये जो है ये विस्फोट होगा, भूकंप आएगा।
सीबीआई जांच को लेकर हरीश रावत की ओर से एक याचिका नैनीताल हाईकोर्ट में भी लंबित है। यूं तो कोर्ट ने सीबीआई जांच पर रोक लगाने से मना कर दिया है, लेकिन सुनवाई पूरी नहीं की है। इस बीच कांग्रेस ने साथ छोड़ चुके 10 विधायकों के खिलाफ चुनाव में मजबूत उम्मीदवारों की खोज शुरू कर दी है, क्योंकि अब आने वाली जीत और हार का फैसला इन्हीं सीटों से तय होना है। कांग्रेस के बागी रावत को ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहते कि वे उनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई जांच बैठाएं, इसलिए वे लगातार हमलावर रहने की रणनीति पर आमादा हैं। शिव जोशी, बीबीसी, देहरादून।
राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मोहम्मद असलीमुद्दीन ने कुछ दिन पहले कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम बनने योग्य नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि नीतीश कुमार बिहार में सुशासन लागू करने में नाकाम रहे हैं। इसके जवाब में राष्ट्रीय जनता दल से ने तस्लीमुद्दीन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और एक हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। सुनिए पटना से मनीष शांडिल्य की रिपोर्ट।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगने और उन पर कई आरोप लगाने वाले राजद सांसद तस्लीमुद्दीन को पार्टी ने शो कॉज नोटिस थमा दिया है। नोटिस में पार्टी ने कहा है कि उनके हालिया बयान पार्टी और बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन के सिद्धांत के खिलाफ हैं। नोटिस जारी करने के वजहों के बारे में राजद के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव SM कमर आलम कहते हैं,
पिछले काफी दिनों से तस्लीमुद्दीन साहब के द्वारा जो बयान दिया जा रहा था वो पार्टी के लिए नुकसानदेह था, महागठबंधन सरकार के लिए नुकसानदेह था और ये लगातार ये ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो बयानबाजी ये कर रहे थे या बयान दे रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चल रहा था इनका बयान।
जदयू की प्रदेश इकाई की उपाध्यक्ष निहोरा प्रसाद यादव ने बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को दुरुस्त बताते हुए तस्लीमुद्दीन को जारी नोटिस को राजद की अच्छी पहल बताया है।
एक तरफ हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की बात करते हैं और दूसरे तरफ जो चेहरा है महागठबंधन का उसके खिलाफ बोलते हैं तो कहीं न कहीं परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को मदद करते हैं।
वहीं विपक्ष का कहना है कि राजद के नेताओं ने कानून व्यवस्था पर जो सवाल खड़े किए हैं उनमें कुछ भी गलत नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ललन कुमार चंद्रवंशी तो केवल तस्लीमुद्दीन को ही नोटिस जारी किए जाने पर सवाल भी करते हैं।
तस्लीमुद्दीन जी ने और रघुवंश बाबू ने दोनों आदमी ने बिहार के कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री के खिलाफ जो बोला है वो गलत नहीं बोला है, इसलिए इनको अपने गलतियों को सुधार करना चाहिए न कि नोटिस जारी करना चाहिए। नोटिस भी जारी करना चाहिए तो एक पक्षीय नहीं, रघुवंश बाबू पर भी इनको नोटिस जारी करना चाहिए।
तस्लीमुद्दीन के बेटे सरफराज आलम जदयू विधायक हैं। इस साल जनवरी में छेड़खानी के एक मामले में अभियुक्त बनाए जाने के बाद पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया। जानकारों का मानना है कि इस कार्रवाई से उपजी नाराजगी भी तस्लीमुद्दीन की वर्तमान तल्खी की एक वजह हो सकती है। वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार भी इससे इत्तेफाक रखते हुए तस्लीमुद्दीन के हालिया तेवर को चौंकाने वाला नहीं मानते।
तस्लीमुद्दीन का एक जो आप रिकॉर्ड देखें तो वो अपने जो अपनी पार्टी का जो नेतृत्व रहा है उसके खिलाफ वो गाहे बगाहे बोलते रहे हैं, ये नई बात नहीं है उनके साथ।
तस्लीमुद्दीन अपने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ पहले भी मुकर रहे हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि अगले 7 दिनों में वे इस नोटिस का किस भाषा में जवाब देते हैं। वे माफी मांगते हैं या तेवर और तल्ख करते हुए पार्टी से बीते साल निष्कासित एक दूसरे सांसद पप्पू यादव की राह पर आगे बढ़ते हैं। मनीष शांडिल्य, BBC, पटना।
राजस्थान के छोटे से कस्बे ब्यावर के श्याम सुंदर साधनानी का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। श्याम सुंदर के पास सिक्कों का अनूठा संग्रह है जिसमें 350 से ज्यादा देशों के 5000 से ज्यादा सिक्के शामिल हैं। सुनिए आभा शर्मा की रिपोर्ट।
सोना, चांदी, पीतल, तांबा और नए पुराने सभी तरह के सिक्कों का संग्रह है 55 वर्षीय श्याम सुंदर साधनानी के पास। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाने वाले साधनानी अपने स्कूली जीवन से ही सिक्के इकट्ठे कर रहे हैं। शुरू में यूं ही ब्यावर में अपनी पैतृक बर्तनों की दुकान पर बिकने आने वाले स्क्रैप में से छांटकर वे सिक्कों को अलग रख लिया करते थे। बाद में उनकी रुचि बढ़ती ही गई। उन्होंने BBC को बताया,
मैं सेकेंडरी पढ़ता था, जब हायर सेकेंडरी तब से मैं कलेक्शन कर रहा हूँ, कॉलेज में भी करता था खूब सारा। अभी लिम्का बुक में मेरा 363 देशों के सिक्कों का कलेक्शन हुआ है। मेरे पास कोइन है कम से कम 5000 लगभग है, 5000 से थोड़ा ऊपर है जो मेरा कोइन एल्बम है, उसमें हर देश का एक अच्छा सिक्का, एक एक सिक्का लगा के रखा है। ऐसे काउंटिंग करें तो मेरे पास है 300 63 देशों के सिक्के इकट्ठे हो चुके हैं।
उनके संग्रह में प्राचीन यूनान से लेकर सबसे नए देश सूडान सहित उन देशों के सिक्के भी हैं जिनका अस्तित्व अब और देशों में विलीन हो चुका है। वे अलग अलग स्थानों और प्रदर्शनियों में जाकर सिक्के खरीदते हैं और कई बार ऑनलाइन भी।
मेरे पास से यूनान के चीन में यूनान साम्राज्य था जिसमें संघ सुई करके या एक दो ऐसे थे सातवीं शताब्दी के नवी शताब्दी के दूसरी शताब्दी के भी सिक्के हैं। वो उस टाइम लोहे के सिक्के चलते थे और खेत वाले सिक्के चलते थे, वो सिक्के भी मेरे इसमें शामिल हैं। कुछ देशों में सोने के सिक्के चले थे, सोने के बहुत सारे सिक्के चांदी के हैं और तांबे के, पीतल के, एल्युमिनियम के, टीन के, मिश्रित धातु के, गिलेट के, इन तरह के सिक्के हैं।
वे अब दूसरी बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाने की तैयारी कर रहे हैं और खास बात यह है कि उनका यह शौक उनका सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर भी है। जब भी वे तनाव में होते हैं तो अपने संग्रह को संवारने में जुट जाते हैं और उनका तनाव चुटकियों में छूमंतर हो जाता है। जयपुर से आभा शर्मा।
आप सबने अनुभव किया होगा कि तंबाकू, गुटखा, पान मसाला और शराब वगैरह की बिक्री पर भले ही पाबंदी लगी हो लेकिन खोजने पर ये चीज़ें बाजार में मिल ही जाती हैं। सरकार पहले इन्हें बेचने का लाइसेंस देती है और फिर अचानक उसे जनता के स्वास्थ्य का ख्याल आता है और वो इस पर पाबंदी लगा देती है। सुनते हैं पाकिस्तान से वसतुल्ला खान की साप्ताहिक डायरी इसी विषय पर।
जब भी भारत या पाकिस्तान की कोई राज्य सरकार साल 6 महीने के लिए गुटके, पान मसाले वगैरह पे प्रतिबंध लगाती है तो मेरे मोहल्ले का राजू पनवाड़ी, भत्ता बढ़ाने के धंधे हैं साहब, क्या करें, पुलिस वालों का भी तो पेट लगा पड़ा है, कहते हुए थोड़ा सा गुटका और फांक लेता है। हिंद हो के सिंध, बिहार हो के बलूचिस्तान, कहीं की भी सरकार जब गुटके, पान मसाले वालों को लाइसेंस देती है और फिर उनसे कई वर्ष करोड़ों रुपए टैक्स और ड्यूटी बटोरती रहती है, उसके बाद अचानक से किसी एक दिन सरकार को हड़बड़ा के ख्याल आता है, अरे ये तो जनता की सेहत के लिए खतरनाक चीज़ है, इससे तो गले और मुँह का कैंसर हो जाता है, चलो हटाओ दुकानों से, छापे मारो गोदामों पर, जब्त कर लो सारा माल। इससे और तो कुछ नहीं होता, जिस चीज़ पे रोक लगता है वो ब्लैक में इन्हीं जगहों से दुगनी तिगनी कीमत पे मिलने लगती है। मैंने तो आज तक ये नहीं देखा कि किसी ने सिर्फ इसलिए पान मसाला या गुटखा खाना छोड़ दिया हो कि आज 23 मई के बाद इससे कैंसर हो सकता है। कहने को तो शरीर बेचने पर पाकिस्तान में पिछले 40 वर्ष से पाबंदी है लेकिन अब सारा काम मोबाइल फ़ोन पर ही हो जाता है। मुजरा भी पिछले 3.5 दशक से सरकार की मंजूर शुदा खास जगहों पर रात 8 से 10 बजे तक ही देखा जा सकता है। इससे बस इतना फर्क पड़ा है कि पहले किबला नवाब साहब मुजरा देखने कोठे तक जाते थे, अब कोठा चल के नवाब साहब के बाला खाने पे पहुंच जाता है। शराब बेचना, खरीदना और पीना पाकिस्तान में आज से नहीं 1977 से अपराध है। मगर कौन सी विलायती या देसी है जो आसानी से उपलब्ध नहीं? अब कोई इतना मूर्ख भी ना हो कि बस स्टॉप पे खड़ा होके बोतल गटागट मुंह से लगा के चीखे, आओ मुझे पकड़ लो। ऐसे पागल को तो सचमुच में पकड़ ही लेना चाहिए। इस बात को छोड़ें कि पूरी एक नार्कोटिक्स कंट्रोल फोर्स बनी हुई है और ड्रग्स स्मगलिंग पे मृत्युदंड भी मिल सकता है। 20 टन पकड़ी चरस और सैकड़ों विलायती बोतलों को भी हर महीने मीडिया के सामने आग लगाई जाती है। फिर भी अगर किसी को कहीं से भी अच्छी चरस ना मिले तो पड़ोस का थाना किस लिए है? अरे कोई ना कोई बांका सिपहिया तो जानने वाला होगा ही ना, चलिए आपका नहीं तो आपके किसी मित्र का, नहीं लानत है आपकी जिंदगी पे। अभी जो बिहार सरकार ने शराब और पान गुटके पे रोक लगाया है तो लगता है कि सरकार के पास इन दिनों करने को कोई ढंग का काम नहीं बचा। बिहार सरकार से अच्छा तो मेरा यार फ्रेडी है, जब भी मिलो नशे में धुत, पूछो कि भैया क्यों इतनी पीता है, अबे मर जाएगा, मगर फ्रेडी का भी एक ही जवाब होता है, अबे नहीं यार, मुझे पता है शराब बहुत बुरी चीज़ है, तभी तो इसे पी पी के संसार से ख़त्म कर रहा हूँ।
ये था वसतुल्ला खान का ब्लॉग। अब वक्त है अखबारों की समीक्षा का। वात्सल्य, क्या कहते हैं आज के अखबार?
जी अमरीश जी, अखबारों में मोदी का जो ईरान का दौरा है वो खबर छाई हुई है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी लीड स्टोरी इसी खबर को बनाया है और जानकारी दी है कि जब रूहानी से मोदी मिलेंगे तो शायद पाकिस्तान का मसला भी उठ सकता है। हिंदू की लीड स्टोरी भी यही है। जनसत्ता ने भी इसे पहली खबर बनाया है। इसके अलावा अफगानिस्तान तालिबान के नेता मुल्ला अख्तर मंसूर कि जो कल मौत हुई थी वो भी ज़्यादातर अखबारों में पहले पन्ने पर खबर छाई हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लीड खबर बनाया है इसे, हिंदुस्तान टाइम्स और हिंदू ने इसको सेकंड लीड बनाया है। नवभारत टाइम्स ने इसका हेडिंग दिया है लादेन की तरह मंसूर को मारा। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स की एक लीड खबर है जो बड़ी दिलचस्प है कि आईएएस की जो परीक्षा है उसमें आयु सीमा घटाई जा सकती है। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से एक कमेटी बनाई गई है जो इस तरह की सिफारिश कर सकती है सरकार से। अखबार का यह कहना है अभी सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा जो है वो 32 साल है। किरण बेदी को कल पुडुचेरी का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। इस खबर को ज़्यादातर अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है और जनसत्ता ने एक दिलचस्प कार्टून बनाया है जिसे आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी बेदी के साथ खड़े हुए हैं, नजीब जंग जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उनके घर के बाहर, और कहा गया है कार्टून में कि बाकी आपको उपराज्यपाल के कर्तव्य और दायित्व तो पता ही हैं। विधानसभा चुनाव गोवा में लड़ेगी आम आदमी पार्टी, ये खबर भी कुछ अखबारों ने पहले पन्ने पर दी है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक और खबर है जो ध्यान खींचती है, इसमें अखबार ने बताया है कि इंडिगो एयरलाइंस का अहमदाबाद से जयपुर जा रहा एक विमान और उसके पायलट ने सड़क को गलती से रनवे समझ लिया। ये एयरपोर्ट के पैरेलल थी सड़क और 27 फरवरी का यह मामला है। इसके बाद दोनों पायलट जो उसमें थे विमान में उनको ग्राउंड पर कर दिया गया है। मणिपुर के चंदेल में चरमपंथियों के हमले में असम राइफल के 6 जवानों की मौत हो गई, ये खबर भी ज्यादातर
जी समय की कमी है वात्सल्य, बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब खेल समाचार सुनिए आदेश कुमार गुप्त से।
इस बार आईपीएल 9 में कमाल के मुकाबले खेले गए, कहने को तो सभी 8 टीमों को 14-14 मुकाबलों के बाद प्लेऑफ में जगह बनानी थी, लेकिन इसमें पहुंचने वाली आखिरी 4 टीमें कौन सी होगी इसके लिए कल तक इंतजार करना पड़ा। आखिरकार कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दिल्ली डेयर डेविल्स को मात देकर अपनी पहली बाधा पार की। अब पहले क्वालिफायर में कल गुजरात लॉयंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से और एलिमिनेटर मुकाबले में बुधवार को सनराइजर्स हैदराबाद का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इस बार सबसे ज्यादा हैरान किया सुरेश रैना की कप्तानी में पहली बार आईपीएल में खेल रही गुजरात लॉयंस ने। छुपी रुस्तम साबित हुई इस टीम ने 14 में से 9 मुकाबले जीतकर 18 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहते हुए अंतिम 4 में जगह बनाई, और केवल एक ही खिलाड़ी अपने दम पर क्या कुछ कर सकता है ये दिखाया विराट कोहली ने, जिन्होंने अभी तक 4 शतक और 6 अर्धशतक की मदद से 919 रन तो बनाए ही हैं। साथ ही कप्तानी में भी अपना जलवा दिखाते हुए पिछले 4 मैच लगातार जिताकर बेंगलोर को अंतिम 4 में पहुंचाकर ही दम लिया। बेंगलोर 16 अंक और बेहतर रन औसत के साथ दूसरे स्थान पर रही। तीसरे स्थान पर रही सनराइजर्स हैदराबाद ने भी डेविड वार्नर की कप्तानी में कुछ ऐसा ही कारनामा किया। डेविड वार्नर ने भी विराट कोहली की ही तरह जमकर बल्लेबाजी करते हुए 7 अर्धशतक की मदद से 658 रन बनाए। वैसे उनके तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने भी 17 विकेट झटक कर उनका काम आसान किया। भुवनेश्वर कुमार ने भी 18 विकेट लेकर दिखाया कि उन पर भरोसा किया जा सकता है। चौथे पायदान पर रही गौतम गंभीर की कप्तानी में खेल रही कोलकाता नाइट राइडर्स। कमाल की बात है कि कोलकाता का कोई भी बल्लेबाज और गेंदबाज शीर्ष 5 खिलाड़ियों में शामिल नहीं है, लेकिन गौतम गंभीर और यूसुफ पठान ने टीम को तब तब संभाला जब टीम मुश्किल में पड़ी। जहीर खान की दिल्ली डेयर डेविल्स अंतिम 4 में पहुंचने से फिसल गई, लेकिन सबसे अधिक निराश किया कभी आईपीएल में अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी से धमाल मचाने वाले महेंद्र सिंह धोनी की राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट्स ने। पुणे का सूरज ऐसा डूबा कि वो केवल 5 मैच जीत सकी। खैर अब लड़ाई 4 टीमों की है, देखना है कौन सी 2 टीमें फाइनल में पहुंचती हैं।
और अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से मुलाकात करेंगे। 2 दिन के दौरे पर ईरान पहुंचे मोदी की रूहानी से मुलाकात के दौरान चाबहार पोर्ट को लेकर अहम बातचीत हो सकती है। इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी ने फलूजा शहर को इस्लामिक स्टेट से मुक्त कराने के लिए बड़े सैन्य अभियान का ऐलान किया है। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा 3 दिन के दौरे पर वियतनाम में हैं। वियतनाम युद्ध की समाप्ति के बाद ओबामा इस देश का दौरा करने वाले अमरीका के तीसरे राष्ट्रपति हैं। ग्रीस की संसद ने कठोर आर्थिक सुधारों से जुड़े विधेयक को पारित कर दिया है। विधेयक को मंजूरी दिए जाने के पहले चार दिन तक इस पर जोरदार बहस हुई। ब्राजील के कार्यवाहक राष्ट्रपति मिशेल टेमर के खिलाफ हजारों लोगों ने रियो डी जेनेरो में प्रदर्शन किया। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचारों के साथ ही नमस्कार भारत की ये सभा यही समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात अब से थोड़ी देर बाद विश्व भारती में होगी। कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो संचालन किया दीपक जसरोटिया ने। तो अब अमरेश द्विवेदी को अपने सभी सहयोगियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।